بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كما كان المبارك في بعد جهاں کی جدائی مجلس کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے دل گزار کرنی ہیں. جہاں اگر کوئی عبدالصغیر نام کے پیش آ رہے ہیں تو ان کی اہلیہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں. عبدالصغیر ماہ رمضان مبارک جس نے صحیح ڈھنگ سے گزارا ہو اس میں کچھ صفات پیدا ہونی چاہیے، اور پھر اس صفات پر سال تمام مشق رہے تو پھر وہ ملکہ بن جائے. یہ آدمی کو پوری طرح اس خوبی پر قابو حاصل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ملکہ یا ملکہ راسخاں. اس لیے کہ صفت وقتی طور پر کسی چیز کی اپنا لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کے اوپر اتنی مشق کرنے کا نام ہے جب وہ ہماری عادت ثانیہ ہو جائے، عادت بن جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عبادت اتنی کرو، عبادت اتنی کرو، اتنی کرو کہ عبادت عادت ہو جائے، اور عادت اتنی شعور کے ساتھ میں اختیار کرو کہ وہ عادت عبادت ہو جائے. کچھ صفات ماہ رمضان مبارک میں بندے میں پیدا کرنے یا اس لائن پر بندے کو ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے مخصوص ماحول دے کر، مخصوص انتظام دے کر، مخصوص فضیلتیں سنا کر اور مخصوص مشق کروا کر اور معمول سے زائد کام ڈال کر، معمول سے زائد کام ڈال کر ایک خاص رخ پر بندے کو چلانا چاہتے. اب وہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن دو تین چیزوں ہی کا اس وقت میں مختصر ذرا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج آنے میں تاخیر بھی ہوئی، جانے میں جلدی بھی. بعض بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے مصروفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کا شیڈول متعین کرنا مشکل ہو جائے. ایسا ہی قصہ کچھ ہمارے ساتھ بھی سر، باوجود کوشش کے دیر سے آئے، باوجود چاہت کے دیر تک آپ کے ساتھ بیٹھے، جلدی بھی جانا ہے. مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنے کی ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم کی اہمیت، اللہ کے حکم کی اہمیت کو دلوں میں بچھانے کا خاص نظام رمضان میں بنایا، اور وہ نظام یہ ہے کہ 11 مہینے دن میں کھانے پینے کی اجازت رکھی رمضان میں بند کرو. اب رمضان مبارک میں مردوں نے، عورتوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، سبوں نے روزے رکھے، جتنے بھی دین پسند لوگ ہیں یا ہم جیسوں کے پاس میں جو لوگ ہوتے ہیں، اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو عادت کیا کی ہے ہر تھوڑی دیر سے کچھ کھانا، کچھ پینا، کبھی گرم پانی، کبھی ٹھنڈا پانی، کبھی سادہ جی، اور کبھی تکلف، ہر تھوڑی دیر سے کھانے پینے کی عادت. 2-4 گھنٹے نہیں گزرتے، ہونا ہی ہونا. کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 وقت آدمی کھاتا ہے، لیکن آپ جب اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پاس 3 وقت کا حساب تو جی ایسا 3 وقت کا ہے، یہ 9 وقت بھی کھایا تو 3 وقت بھی کھایا بولتا، فجر کے بعد بسکٹ کھاتا ہے، چائے پی لیتا ہے، یا اڈلی کھاتا ہے، چائے پی لیتا ہے، پھر 9 بجے پھر ناشتہ کرے. جب تک ناشتہ نہیں کرے میں وہ بھی کر رہا ہوں، تو سونے کے بعد تو شروع کرتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد سے ہر تھوڑی دیر کو کھاتا پیتا. لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک 14-14 گھنٹے، 15-15 گھنٹے، 14.5 گھنٹے کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں. حالانکہ بہت سو کھانے کا تقاضا بھی ہوتا ہے، نہیں کھاتا، پینے کا تقاضا ہوتا ہے، نہیں پیتا. خاص طور سے یہ شوگر وغیرہ مختلف قسم کی بیماریوں میں جو لوگ رہتے ان کی حالت تو خراب ہو جاتی، ان کے پاس اثر کے بعد تو پڑی پڑ جاتے، بس اتنا مشکل ہو جاتا ہے. کھانے کا تقاضا ہے، پانی کا تقاضا ہے، मगर ये पूरा दिन तकाजे के बावजूद तकाजा पूरा नहीं कर। और आप देखेंगे अपने कमरे में है, कमरा बंद है, कोई नहीं देख रहा, पानी मौजूद है, प्यास लग रही है, अलग सूख गया है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप देखें कि एक पुतला भी मुंह में नहीं डालता, क्या बड़ा क्या छोटा क्या मर्द क्या औरत, चार में तो खाता पीता ही नहीं, अकेले में भी नहीं खाता नहीं पीता, एक कतरा दाना एक कतरा पानी का एक दाना खाने का नहीं डालता, ये पूरा महीना मशकर उसमें हक की अहमियत। एक महीना वो उसके दिल दिमाग में बिठाई गई और अमली हैसियत से मश्क कराई। इसलिए एक बात तो ये समझ में आई कि सर हुक्म हक की अहमियत इतनी ज्यादा है कि तबीयत का तकाजा होने के बावजूद, जिस्म की चाहत के बावजूद, किसी मखलूक के नहीं देखने के बावजूद, अकेले रहने के बावजूद, बंद जगह रहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म तोड़ा नहीं जा सकता। अब ये फास्ट ट्रैक पर गोया गाड़ी आई। अब इसी हालत को अगर साल तमाम जारी रखेंगे तो मलिका बन गए। अब इस सिफत में इस खूबी में कमाल पैदा हुआ है, फिर उसके बाद वो सिफत सिफत कहलाएगी। इसलिए एक पैगाम तो यह है कि भाई जिस चीज पर डाला गया महीना भर चलाया गया, तो उस महीने पर 11 महीने आदमी चलता रहे। दूसरी चीज जो जहन में रखने की वही है कि कुछ चीजों से रोका गया था, जिससे ये समझ में आया कि साहब जिस चीज से रोका जाए उससे रुकना चाहिए। तो इसलिए अब जहन जो दूसरा हमारा मुंतकिल हो वो इस तरफ हो कि जिस चीज से अल्लाह ने रोका है हर उस चीज से मुझे बचना है। खाने से रोका तो खाने से रुकना है, पानी से रोका तो पानी से रुकना है, गाने से रोका है तो गाने से रुकना है, गाली से रोका है तो गाली से रुकना है। जब हम ये दो चीजों का तकाबुल देखते हैं, खाने का और गाने का, तो समझ में आएगा कि साहब खाने से रोकना वक्ती है और रुकना जरूरी, गाने से रोकना मुस्तकिल है और रुकना जरूरी। वक्ती का मतलब है सुबह से शाम तक, मुस्तकिल का मतलब है 24 घंटे, वक्ती का मतलब है साल में एक महीना, मुस्तकिल का मतलब है साल के 12 महीने। समझ में आने के वास्ते खाना गाना सुनाया गया, समझ में आने की जो चीजें कि जिस चीज से रोका है उससे आपको रुकना है। जब आदमी में ये सिफत आ जाए कि जिस चीज से रोका है उससे रुकने लगे, तो उसी का नाम है सिफत तकवा। और रोजे कह के वास्ते है तकवा पैदा करने के वास्ते, लाल लगूं तब तकवा रोजे कह को फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। सारी नेमतें तकवे के साथ है, तकवा बचने का नाम है, अगर नतीजा उसका हर चीज के हासिल करने का जरिया है। आहिशात से रुकना इसका नाम तकवा है दुनिया में, लेकिन तकवा आहिशात की तकमील का जरिया है। नजर का समझो, थोड़े दिनों के लिए ख्वाहिशात से रुकना है, उसके नतीजे में जब सिफत तकवा पैदा हो गई तो जन्नत किसके वास्ते है? तकवे वालों के वास्ते। जन्नत जिसकी वसात आसमानों और जमीनों जैसी है, एक एक महल इतना बड़ा, एक कोने में मौजूद शख्स दूसरे कोने वाले को देख नहीं सकता, इतने शानदार महल ये आदमी का तसव्वुर नहीं कर सकता, इतनी तरक्की हो गई। हालांकि महलात की, महलों की, बिल्डिंगों की, हवेलियों की, किलों की इतनी तरक्की हो गई, जब आदमी को जाने के वास्ते दरवाजा खोलने के लिए हाथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, खाली नजदीक गया तो खुद ही खुल जाता। पानी लेने के लिए टूटी का कान मोड़ने की जरूरत नहीं है, पानी से हाथ लगे तो पानी आता। देखे ना देखे गोबर चढ़ना है, टांग उठा के डालने की जरूरत नहीं है, है फल खाने के लिए 4 महीने 6 महीने इंतजार की जरूरत नहीं है, राम का मौसम गया फिर उसके बाद में आना बोले तो फिर 4-6 महीने 5-6 महीने का इंतजार करना है आपको। ये ज्यादा भेजा में रखा हुआ मेरा बात नहीं रहती जैसे होनी चाहिए। वहां ऐसा कुछ ही नहीं है, एक मतलब फल तोड़ लिए उसकी जगह दूसरा लगने के बाद 6-8 महीने होना, बहुत तेजी से उगने वाले जो है साल में 2 फसलें 3 फसलें बहुत। वहां का मामला ऐसा नहीं है, जो तोड़ते ही लगता है, फिर लगा भी तो कैसा लगता, छोटा नहीं लगता, इंतजार करना कई हफ्ते बड़ा होने पर, ऐसा नहीं है। दुनिया के निजाम में, जन्नत के निजाम में जो फर्क है वो ये है कि दुनिया में अल्लाह की सुन्नत का फरमा है, जन्नत में अल्लाह की कुदरत का फरमा है। अल्लाह ने जो निजाम बनाया वो ऐसा है। यहाँ अल्लाह की सुन्नत ये है कि कोई चीज छोटी बनेगी, फिर ऐसा बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर उसी के साथ साथ निजाम में ये है कि कभी कीड़ लग गया, कभी ओले पड़ गए, बारिशें हो गई, कभी सूख गया, टाइम लगता है। अल्लाह की सुन्नत है, जन्नत अल्लाह की कुदरत के मुजाहरे की जगह है, कौन है हैसियत तोड़ते ही लगता है, वहां इंतजार करने का नहीं आता। इसी वास्ते जन्नत के बारे में सूरह वाकिया में जिक्र है, ला मक्तूआ और ला ममनूआ। इसी बार में आप चले जाएंगे तो देख कर आपको ऐसा समझ में आएगा कि हर दरवाजे पर फल फल लगे हुए हैं, जिससे देख के ये समझ में आएगा कि शायद ये तोड़े ही नहीं गए और तोड़ना शायद मना। देखे तो समझ में आएगा ला मक्तूआ, लेकिन उस देखने की वजह से तोड़े हुए नहीं है, शायद तोड़ना मना है, उसके बारे में फरमाया जा रहा है ला ममनूआ, ममानात में नहीं है उसमें, इधर तोड़ा इधर लगे, इधर लगा इधर काबिल इस्तेमाल हो गए। तो ये जन्नत किसे मिलेगी, किसके लिए तैयार है, सबक भूल जाएंगे, असल सबक भूल जाएंगे, वो मजा होगा। कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे तो बात फिर वहां है, यहाँ रात टपकना शुरू हो जाती है। ऐसी अजीब गरीब जन्नत अल्लाह ने बना रखी। फिर यहाँ के महिला में ये फर्क है कि साहब किसी जगह आप जा रहे हैं तो दूर से जाना है, वहां जाके उन्हें माही को देखेगा, किधर से जाना मौला, किधर से जाना, जहां से जाना जाए, जहां जाएंगे वही दरवाजा खोले, किसी हर ख्वाहिश की तकमील वहां मौजूद है। तो ये किसे मिलेगी, तकवे वाले। अब इतनी बात अगर समझ में आई है तो अब समझ लीजिए कि तकवा अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचने का नाम है, और अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचने का मफहूम क्या है, आदमी की ख्वाहिशात की तकमील का जरिया है। यहाँ ख्वाहिशात से रोका गया और रुक जाना तकवा है, और भोग देना मुस्तकिल मकसूद नहीं है बल्कि मुस्तकिल नवाजने का जरिया है। उसको समझाने के लिए बोलते रहते हैं आमतौर पर हम बाद मरीजों को इक्की दर्द नरम खाना, जायकेदार मसालेदार चटपटी चीजें, सफील चीजें, मुकवी चीजें नहीं इस्तेमाल करने देते, हालांकि अपना पसंदीदा होता है, अपना महबूब होता है, लेकिन उसे रोक देते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं इस्तेमाल करना है। तो इसको जो रोका जा रहा है ना, ये वक्ती तौर पर उसके अंदर में उसको कबूल करने की सलाहियत पैदा करने के लिए रोका जा रहा है। तो मर्ज दूर होकर सेहतमंद हो जाए तो अब उसके लिए कोई चीज मना नहीं है। जिस वक्त में कबूल करने की सलाहियत पैदा करने का जो मरहला था, अगर उस मरहले में उसे रोका न जाता तो आइंदा के लिए उसके अंदर ये सलाहियत पैदा नहीं होगी थी। इसलिए अब अगर कोई कहेगी मौलवी लोग हर चीज को मना करते, हर चीज को मना करते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, जिंदगी तंग कर दिए बोले बाबू, कौन सा वो मना करने वाले थे, कौन सा भी बंदे जी तंग कर दिए बोलते, बल्कि बार बार लोगों ने यहाँ तक बोल दिए। अच्छा हुआ पहले जमाने में चाय नहीं दी, चाय होती तो ये जमाने की मौलवियां हमसे भी मना कर देते। मौलवी लोग मना नहीं करते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख्वाहिशात की तकमील से इसलिए रोकते हैं ताकि ख्वाहिशात को पूरा करने की इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो, जो यहाँ पूरी नहीं होगी वहां होगी। तो रमजान मुबारक के महीने में आपने ये मश्क की है महीना भर के दिन तमाम में तबीयत तकाजों को पूरा करने से अपने आप को रोके रखे, अकेले में भी रहे तब भी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ تقاضا کتنا ہی ہو، جب اللہ نے روک دیا ہے اس سے مجھے ہر صورت میں رکنا ہے، اور دوسرے یہ چیز سمجھنا ہے کہ جس چیز سے روکا ہے مجھے اسے رکنا ہے. اب ان کی روکی ہوئی چیزیں دو ہیں، ایک وقتی ایک مستقل. مستقل بولے تو یہاں کے اوقات کے تقابل کے حساب سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں. دن میں بھی منع ہے، رات میں بھی منع ہے، رمضان میں بھی منع ہے، غیر رمضان میں بھی منع ہے. جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے ان تمام چیزوں سے روکنا، یہ صفت اپنے اندر آنا، یہ صفت بننے کے واسطے ساتھ تمام اس محنت کو کوشش کو جاری رکھنا. جاری پٹری پر تو آ گئی رمضان ہے، چلتے بھی تو رہنا نا، نہیں چلیں گے تو کیسا ہوں گے؟ ٹرینوں سے اس سے اس سے پکڑ کے لا کے جی لائن پر اس کے کھڑا کر دیے، چل رہی نہیں، کون سا راستہ طے ہوں گا؟ راستہ تو نہیں ہو سکتا اگر چلے گی نہیں. اسی طریقے سے سال تمام اس کی مشق جاری رکھنے کا اہتمام کرنا، بھائی بھی بہن. دوسری بات، رمضان مبارک کے بعد عام طور پر محفوظ نہیں رکھی جاتی، وہ یہ ہے کہ رمضان میں اپنا جو مجھے توجہ اعمال کی طرف رہتی، رمضان جانے کے بعد ویسی توجہ نہیں رہتی. اس کے بعد رمضان میں تو فضیلت والی چیز پر بھی توجہ کرتے ہیں، رمضان جانے کے بعد فرضیت والی چیز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. بہت اچھی قسم کی کیفیت ہے. فضیلت والی چیز کی طرف بھی معمولی سی بے التفاتی کو پسندیدہ نہیں سمجھتا رمضان، رمضان کے بعد میں فرضیت والی چیز کو بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے طرز عمل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں اپن لوگ مقید تھے، رمضان گیا تو آزاد ہو گئے. جی پوچھنا یہ ہے کہ رمضان میں مقید کون تھا، آزاد کون ہو؟ جی ہر مسجد میں سنے ہوں گے، ہر ملتاب میں سنے ہوں گے، کون مجھے رمضان میں، رمضان میں سنیا کہ نہیں سنیا، آزاد ہوں گے نہیں ہوا؟ وہی صفت اگر اپنے اندر رہیں گے تو کیسا ہوں گے کہ ہم رمضان میں مقید ہیں، رمضان میں آزاد ہوں گے؟ پتا نہیں بہنوں کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. رمضان میں شیاطین مقید تھے، سرکش شیاطین، رمضان گیا تو کھل گئے. اکثر بے توجہی کے نتیجے میں لوگوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں سمجھ سے لگے بندے ہیں، بالکل کسے ہوئے ہیں مخصوص ماحول میں، مخصوص رمضان میں، بلکہ بہت سارے ایکسٹرا کام بھی اس کے دل میں ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ اس کے تو نو لگاتا ہے، رمضان کو ون پیس لگاتا ہوں، خالی ایک ٹائم بھی ہے کہ نہیں؟ ایسی بڑے نا، روز کی عشاء کی نو رکعت، رمضان میں 29 رکعت، 20 رکعت تراویح اور روز کی نو، جتنے ہو گئے؟ روز کی نو بھی تو کم سے کم بول رہا ہوں نا، جتنا اپن کرتے عام طور پر وہی کر کے بہت کرے بول کے سمجھ رہے اپن. یہ ایکسٹرا کام تھا، بہت سارے تراجد بھی پڑے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت الگ کرے ہوں گے، ذکر اذکار کا اہتمام بھی زیادہ ہوا، لیکن رمضان جانے کے بعد پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہی. اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی مقدار کے اعتبار سے رمضان میں زیادہ مقدار ہم نے عبادات پہ رکھی ہو، لیکن اتنا تو کم از کم اس کے نتیجے میں قائم رہنا چاہیے کہ جو لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس کی ادائیگی میں کی توجہ میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری چیز ہے جسے ملول رکھنا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات مجھے اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آج کل ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں، ضروریات ہیں، اس میں بڑی پریشانی ہے، اس میں سے خاص طور سے پانی کی قلت کا مسئلہ کافی لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا ہوا. اگرچہ ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پانی کی انتہائی قلت کسے کہتے ہیں، وہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے جا کے ایتھوپیا والوں سے، تو پتہ چلے گا کہ پانی کے قحط کا کیا حال ہے. زمزم کی چھوٹی جب بھی ہوتی، زمزم کی چھوٹی پلاسٹک بڑی مشکل سے اس میں پانی جیب میں رکھ لیتے ہیں، وہاں کے مسلے ہیں، اس سے صرف 4 فرض ادا کرتے ہلکے پھلکے انداز میں ہوتی، لیکن ہم آپ
उनके पास उतनी मकदार नहीं कि तीन मरतबा कुल्ली करें, तीन मरतबा पानी डालें, तीन मरतबा हाथ धोएं, तीन तीन मरतबा पाँव धोएं, इतना पानी नहीं रहता है। अपने पास में क्या है, थोड़ी सी मामूल के हिसाब से कमी है। तो ये जो परेशानियां होती हैं, ये परेशानियां हमारी अपने गुनाहों और कोताहियों की वजह से ज्यादा पेश आती है। इसीलिए गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा इस्तग़फ़ार ये अल्लाह के नाराजगी को दूर करने वाला और अल्लाह के खुसूसी रहमत को मुतवज्जे करने का जरिया है। ये जो अपने काम नहीं बनते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये आयत पढ़ लो, ये वजीफा पढ़ लो। नहीं जानने वाले शायद ये समझते हैं कि ये वजीफे से वो काम बनता, वजीफे से नहीं बनता काम, वो तो अल्लाह के काम बनाने से बनता है। वजीफे से अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होकर फिर परवरदिगार आलम वो काम बनाता है। इसलिए अगर पाबंदी से नहीं पढ़े तो भी सही नतीजा नहीं करता, सही नहीं पढ़े तो भी सही नतीजा नहीं करता, अल्लाह को राजी करने के मकसद से नहीं पढ़े, दुनियावी गरज से पढ़े तो भी वैसा नतीजा निकलना जरूरी नहीं रहता। तो रहमत हक को मुतवज्जे करने वाले जो अमाल है, खुसूसी रहमत, एक रहमत आम्मा है और एक रहमत खासा है। रहमत आम्मा तो सबको आते हैं, हर हालत में आते, लेकिन रहमत खासा जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिला इरशाद फरमाया, वो आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी खैरखाही करेंगे, अच्छी बातों का हुक्म करेंगे, बुरी बातों से रोकेंगे, नमाज अदा करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह रसूल का कहा मानेंगे, इन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। ये आया कुरान आयत है, जिस्म का मिलना भी उनकी रहमत है, जान का मिलना भी उनकी रहमत है, बिनाई का मिलना भी उनकी रहमत है, रोशनी का होना भी उनकी रहमत है, हवाओं का होना भी उनकी रहमत है। ये रहमत उमूमी है, लेकिन उसके साथ साथ एक खुसूसी रहमत होती है। वो खुसूसी रहमत का मुतवज्जे करने के वास्ते अमाल होते हैं, उनमें से एक अजीम शान अमल है तौबा और इस्तग़फ़ार का गुनाहों को। इसलिए बारिशों के लिए, पानी की कमी के इजाले के लिए, रोजगार की तंगी के दूर करने के लिए, अमराज से शिफा के लिए, मसाइल के हल के लिए, उलझनों के इजाले के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के मसले सुनाते आए और बहुत से लोग अकेले में सुनाना चाहते, नतीजे में टाइम नहीं मिलता, नहीं सुना सकते। अकेले में सुनाने के एक अजीब एहसास होता है, लोग शायद वो समझते हैं कि मेरा ये हाल जैसा किसी का हाल नहीं है, शायद ये परेशानी जैसी किसी की परेशानी नहीं है, शायद मेरी ये खराबी जैसी पूरे जमीन पर किसी की खराबी नहीं है, और शायद अब तक इनको कोई ऐसी बात सुनाया नहीं होगा जो मेरे हाथ से निकालनी है, कोई दूसरा सुनने का नहीं है, ऐसा रुकावटें पेश आ जाती बात हो। हालांकि आमतौर पर बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों को अलायगी में तनहाई में वक्त दिया गया कि बोलो क्या बोलना है, सुनने के बाद नहीं बोलना होगा, ये बात तो माइक में बोली जा सकती है, आप उसके बाद से इतनी सहमत करें, सबको फायदा हो जाता है उसमें। ऐसा अपने खराबियां अपने गुना दूसरों को मालूम हो गया तो गवाह बन जाता ना, इस वक्त बनाए जाएंगे अपना हाल है बोल के नहीं बोलना, साहब का ऐसा हाल है सिलसिले में क्या जाएगा, जिनसे पूछ रहे उनको भी बताना जरूरी है कि मेरा हाल है। इसके बाद मुफ्ती लोग जितने फतावा लिखते जो जितने सवाल बनाते जैसे बनाते, जैद गुजरा उसने अपने इतने बेटे छोड़े, इतनी बेटियां छोड़ी, इतनी जायदाद छोड़ी, कौन से थे किसी को ऐसे हाल पूछ लेना चाहिए। वह जरूरी तौर पर आदमी तजल्लुबात में पहुंचता है, उसके नतीजे में सही इस्तेफादा नहीं कर सकता। दरमियान में बात आ गई जो मैंने सुना दी, बस करना है वही कि भाई अपनी जो खामियां हैं, जो खराबियां हैं, जो अयूब हैं, जो गलतकारियां हैं, खराब अमल हैं, ज़ाहिरी बातिनी हर किस्म के गुनाह हैं, इनसे सच्ची पक्की तौबा ये हक्काना जल्लशानों की रहमत को मुतवज्जे करने का सबब है। इसलिए कि गुनाह माफ होते हैं तौबा के जरिए, और गुनाहों का माफ होना अल्लाह की रहमत के सबब से होता है, और रहमत के हुसूल का जो जरिया है वो अल्लाह की तरफ तवज्जो देना पड़ता है। इसलिए तमाम गुनाहों से तौबा करने का खास एहतमाम करना, रमजान में करे तो वो तौबा को कायम रखने की कोशिश करे। इसलिए कि तौबा नाम ही है मुस्तकिल तौर पर बुराई से बचने के इरादे के साथ माफी दरअसल करने, नदामत के साथ, एहसास नदामत के साथ, आइंदा बचने के इरादे के साथ जो गलती होंगी उससे माफी मांगना, उसका नाम तौबा है। और उम्मत मुस्लिमा की अगर अक्सरियत गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करे तो इंशाल्लाह अजीज हफ्ताना जिंद शाह की जाने से ये जो आजमाइशी हालात पेश जाते हैं इससे बड़ी हद तक हिफाजत हो जाए। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं अगर कि उसकी शाह नजूल के अतबार से उसका मखसूस लोगों के सिलसिले में आया है लेकिन उसका अंदाज बयान आम है। अल्लाह पाक ने फरमाया लोग अगर ईमान लाए तकवा इख्तियार करें तो हम उनके ऊपर बरकतों के दरवाजे खोलें आसमान से जमीन से। ऐसे ही अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जगह इरशाद फरमाया इन्ना रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह नेक काम, अल्लाह की रहमत नेक काम करने वाले लोगों के करीब। जाहिर है कि तौबा नेकियों में सबसे पहली नेकी ये समझ लीजिए जो बंदों को अंजाम देना पड़े। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी बयात होने के बाद से आता है उसे सबसे पहला काम तौबा कराना है। अब ये आजकल बयात होने का निजाम जरा आम तौर पर चल पड़ा है, लोगों ने उसको ऐसा इजी ले लिया कि उसे यही एहसास नहीं है कि मैं ऐसा इरादा कर रहा हूँ, मैंने तौबा की है तो उसका मुझे कितना पासों लिहाज करना चाहिए, उसके नतीजे में बाद दोबारा एक नई शक्ल निकाली तौबा कर लेते फिर उसके बाद में तौबा तो देते क्योंकि दूसरा आगे बया थोड़ा तो उसके साथ में आगे अपन भी फिर हो फिर तौबा कर लेते फिर तोड़ देते फिर भी तीसरा आगे बया थोड़ा तो उसके बाद उसके साथ में आगे बढ़े सावधान नहीं पकड़ अरे पकड़ लिया तस्वीर कर लो। ऐसी सूरत में तो आदमी की तबीयत में अहमियत वकात खत्म हो जाती उसके नतीजे में ये परेशानी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा युर्सिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह से माफी मांगो, गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाए। बारिशों का हासिल होना उसका जरिया हमारे हमारी जानिब से इस्तग़फार होगा। फिर आप ये सोचते होंगे कि अक्सरियत तो नाफरमानों ही की है मगर फिर भी बारिशें होती रहती हैं, ये क्या किस्सा है। बात यह है कि परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में जगह इरशाद फरमाया मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर, अक्सर लोग दरगुजरी कर देते हैं। बाकी जो मुसीबत आती है वो तुम्हारी अपने करतूतों की वजह से आती है, ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं, बख्श देते हैं, माफ कर देते हैं, मुतनब्बे करने के लिए होती है थोड़ी बहुत जो आजमाइश आ गई भाई अपने अमल की इसलाह कर लेनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों ये दो चीजें इस मौके पर आप हमारा ध्यान में रखें, एक तो भाई रमजान मुबारक में जैसे हम रहे कोशिश करना है इस बात की कि हमारा रुख आमाल का इबादात का बुराइयों से बचने का बिलखसूस नवाज़ों के एहतमाम का साथ तमाम जारी रहे और खुले में छुपे में तन्हाई में चार लोगों में अल्लाह के हुक्म का पासो लिहाज रखने की तरफ पूरी तवज्जो रहे और अल्लाह के जो वक्ती अहकाम है वो वक्ती अहकाम की रियायत के साथ साथ अल्लाह के जो मुस्तकिल अहकाम है उन मुस्तकिल अहकाम की रियायत को मरूज करने की कोशिश उसके साथ साथ अपनी जिंदगी में पाई जाने वाली हर कोताही से तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए आइंदा उनसे बचने का पूरा इंतजाम रखना। अल्लाह ताला अपने करम से सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु सुब्हाना सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अलिहि اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
Thank you.